यही, और साधना करके तुम उस समय को कम कर देना चाहते हो, यही बताते हो। मैं कहा यही तो बता रहा हूं, हम साधना करके पूर्णता की अभिव्यक्ति की जो अवधि है, जो समय है, जो कालक है, उस काल को हम कम कर देना चाहते हैं। तो कहता है कि अच्छा तुम काल को क्यों कम करना चाहते हो, इसका क्या उत्तर है तुम्हारे पास, तुम जल्दी क्यों करना चाहते हो, जल्दी क्यों पड़ी है तुमको, कि ठीक है उसको होने दो ना, अपने आप होने दो, अरे तिनका पड़ा हुआ है उसको होने दो। हमने कहा देखो भाई, अब यह तो तुम मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध तुम बात कर रहे हो कि मनुष्य से कभी यह कहा जाए कि उसको होने दो, यह मनुष्य कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मनुष्य के भीतर में उसकी प्रकृति ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है कि मनुष्य हरदम आगे जाना चाहता है, यह मनुष्य की रूढ़ प्रकृति है। हम रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो सबसे पहले चढ़ेंगे, उतरते हैं तो सबसे पहले उतरेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगा, पर व्यक्ति में वह रूढ़ है, प्रवृत्ति है, हम धक्का दे करके उतरेंगे, जल्दी उतरना चाहेंगे। हम खड़े हैं, कोई आ रही है गाड़ी, हम तुरंत दौड़ करके सड़क पार करना चाहते हैं, एक्सीडेंट होते होते बचता है और हम पार कर गए तो क्या, हमने क्या किया, हम बहुत जल्दी में तो नहीं है वहां पार करके फिर गप लगा रहे हैं, तो फिर जल्दी क्यों की पार करेंगे, नहीं है मनुष्य में, इसको मनुष्य क्या करेगा, है हमारे भीतर कि हम कोई समय बचाने के लिए ऐसा करते हो कि समय बचा करके उसका उपयोग करेंगे इसलिए हम जल्दी करते हो, ऐसी बात नहीं है। यह शीघ्रता हमारे स्वभाव में रूढ़ है, हमारी नस नस में रूढ़ है, और यह जो शीघ्रता है हर कार्य में हर क्षेत्र में अपने को व्यक्त करती है। मनुष्य हरदम पहले जाना चाहता है, तो इसीलिए जब उसने कहा कि तुम क्यों जल्दी करते हो, तुम जल्दी क्यों करते हो, तो हम कहते हैं कि जल्दी तो उसके स्वभाव में है, मनुष्य के स्वभाव में ही शीघ्रता है, तो वह तो शीघ्रता करना ही पसंद करेगा, तो वह शीघ्र ही जाना चाहता है, शीघ्र ही सब कुछ करना चाहता है, इसलिए वह साधना करता है और उनको हटा देना चाहता है बाधक तत्वों को। और दूसरी बात, यह तो पहला कारण, क्या है दूसरा कारण, अच्छा देखो भाई, अब तुम एक रास्ते से जा रहे हो और कोई एक तुम्हारे प्रति एक सहृदय व्यक्ति आ जाता है और कहता है देखो इस रास्ते से मत जाओ, वहां पर बड़ी फिसलन है, एकदम से गिर पड़ोगे, थोड़ा सा घूम के जाओ, ऐसा उस बाधा को बचा करके जाओ, तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि हाँ, उसने कहा तो ठीक है मैं बचा करके चला जाऊं, क्यों तुम वहां से क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो ना, उस व्यक्ति ने कहा कि वहां से मत जाओ, फिसल जाओगे, बड़ी फिसलन है, तो कहीं फिसल गए तो हड्डी टूट गई तो फिर बड़ी मुश्किल है। बस यही बात है, यह जो साधक हैं वह अपने आप चुपचाप छोड़ नहीं देना चाहता कि कब वह प्रकृति अपने क्रम से, अपने स्वभाव से, अपने समय से इसके भीतर की पूर्णता को व्यक्त करेगी, तो वह इस लंपझुंप में पड़ना नहीं चाहता। मालूम नहीं अरे बाबा कब, वह तो तुरंत चाहता है, तुरंत अपने हाथ में उसको ले लेना चाहता है। वह कहता है मैं अपने हाथ में इस मन के विकास को ग्रहण करता हूं और मैं मन के विकास को संचालित करूंगा अपने हाथ में लेकर के। उसके मन के भीतर में यह इच्छा उठती है और इसलिए वह मन के विकास को संचालित करने के लिए यह साधना करता है। कहा अच्छा जो तुम कहते हो कि यह मन के विकास को अपने हाथ में ले लेना चाहता है, तो इसके पीछे तुम्हारा कोई वैज्ञानिक आधार है कि तुम उड़ंछु कुछ बात कह रहे हो, कि यह व्यक्ति अपने मन के विकास को स्वयं के हाथ में लेना चाहता है, तो यह केवल एक कपोल कल्पना है या एक सुंदर इच्छा है। मनुष्य कई इच्छाएं करता है, तो उसी प्रकार की एक बड़ी सुंदर इच्छा है, एक सुंदर कल्पना है कि मैं अपने मन के विकास को हाथ में ले लूं, अथवा यह एक रियालिटी है कि यह एक सत्य बात है कि वह अपने विकास को अपने हाथ में ले सकता है। कैसे ले सकता है, वेदांती ने कहा कि इसका प्रमाण तो तुम ही लोग देते हो, विज्ञान के क्षेत्र में ही यह बात आ गई है। वेदांती कहता है और विज्ञान के क्षेत्र में, आज जीव शास्त्र के क्षेत्र में तुम्हारे ही वैज्ञानिक यह मान रहे हैं, जीव शास्त्री यह मान रहे हैं कि आज यह जो मनुष्य योनि है या मनुष्य जो है, तो मनुष्य योनि में आने के बाद यह जो विकास का क्रम है ना, वह फिर यांत्रिक नहीं रह जाता है। यह बड़ी अद्भुत बात है विज्ञान की दृष्टि से भी, कि जिस समय डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को जन्म दिया था, तो डार्विन ने यह कहा था कि यह जो विकास की प्रक्रिया है पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि यह जो विकास हो रहा है तो इसमें किसी योनि को कोई स्वच्छंदता नहीं है, जिस प्रकार प्रकृति उसे नचाएगी
कठपुतली के समान उसे नाचना पड़ेगा। मानो यह प्रकृति सूत्रधार है और प्रकृति जिस प्रकार से इन योनियों को नचाएगी उस प्रकार इनको नाचना पड़ेगा। इनके पास अपना कोई फ्री विल नहीं है, कोई इच्छा स्वातंत्र नहीं है और किसी प्रकार का पुरुषार्थ उनके पास नहीं है कि हम अपने मन से कुछ कर सकेंगे, यह बात नहीं है। यह वह विकास का सिद्धांत मानता था डार्विन के समय, आज बदल गया। तो कहा वेदांति ने कि अरे तुम्हें ही देखता हूं कि अपने इसका ज्ञान नहीं है सिद्धांतों का। अरे तुम्हारे ही इस भौतिक शास्त्र, इस जीव शास्त्र के क्षेत्र में देखो कितने कितने ये सब नए नए सिद्धांत आ गए हैं और तुम्हें उन सिद्धांतों के साथ परिचय नहीं है। तुम्हारे ही ये जो जीव शास्त्री हैं, जूलियन हक्सले हैं, देखो क्या बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं वे कहते हैं कि देखो यह जो यह मनुष्य तक जब तक विकास नहीं आया है तो मनुष्यतर योनियों में जो विकास का क्रम है वह तो पूरी तरह से मैकेनिकल है, यांत्रिक है, वहां तक तो यांत्रिक है। और जो ही मनुष्य योनि में यह चेतना आई या जीवन का प्रवाह आया कि इट नो मोर रिमेन्स मैकेनिकल, इट बिकम्स साइको सोशल। यह बड़ी अद्भुत बात है। वे कहते हैं कि यहां पर मनुष्य योनि में जो ही यह विकास का प्रवाह आता है जो ही वह साइको सोशल हो जाता है, वह यांत्रिक नहीं रहता, वह मनोसामाजिक हो जाता है। और इसलिए दो बातें बहुत अद्भुत करते हैं जूलियन हक्सले। आज के बहुत बड़े विकासवादी हैं। उन्होंने ठीक वही क्रम लिया। डार्विन ने जिस विकासवाद की घोषणा की उस विकासवाद को इन्होंने समुन्नत किया है, संपुष्ट किया है जूलियन हक्सले ने। और उसके साथ उन्होंने दो मान्यताएं जोड़ दी जो पहले नहीं थी। एक मान्यता वे कहते हैं कि इसका एक लक्ष्य है, यह जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यह जो विकास की प्रक्रिया है, तो यह विकास की प्रक्रिया निरुद्देश्य नहीं है। पहले विकासवादी इसे निरुद्देश्य मानता था, पर आज का जो विकासवादी है वह इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, विकास के क्रम को निरुद्देश्य नहीं मानता। वह कहता है कि इसका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? उनके शब्द मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वे कहते हैं वह लक्ष्य है पूर्णता और अधिक पूर्णता। ये उनके शब्द हैं, उनको हम समझेंगे। कहते हैं जूलियन हक्सले कि यह निरुद्देश्य नहीं है। आज इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक लक्ष्य निरूपित हुआ है और वह लक्ष्य है पूर्णता और अधिक पूर्णता, फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट। और दूसरी बात वे कहते हैं कि यह जो मनुष्य है वह कैसा है? मनुष्य में आकर के क्योंकि विकास का प्रवाह साइको सोशल हो जाता है, इट नो मोर रिमेन्स मैकेनिकल, इट बिकम्स मोर मेंटल, या मानसिक अधिक हो जाता है, इसलिए मनुष्य में यह क्षमता आ जाती है कि वह अपने मन को पकड़ करके और अपनी ही वृत्तियों को इच्छा अनुसार वह रूप दे सकता है, उन पर वह नियंत्रण साधित कर सकता है। यह वे कहते हैं। और तो यह भी कह देते हैं इसका मतलब यह है कि बाई प्रॉपरली मैनिपुलेटिंग द फैकल्टीज ऑफ हिज माइंड मैन हैज बिकम ए डोमिनेंट पिक्चर। वो कहते हैं कि अपने इस मन की वृत्तियों को पकड़ करके, सुसंबद्ध करके मनुष्य के भीतर में इतनी क्षमता आ गई है कि इस प्लैनेट में, इस ग्रह में वह बड़ा डोमिनेंट पार्ट कर रहा है, बहुत ऐसा जबरदस्त अभिनय कर रहा है। और उसमें क्या क्षमता आ गई है? वह अपना यह जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस की गति है, विकास की जो गति है, उस विकास की गति को एक्सेलरेट कर सकता है, उसको वह बढ़ा सकता है, विकास की गति को बढ़ा सकता है। इसका सामान्य मतलब कॉरोलरी यह होगी कि जो विकास अपने आप 200 साल में साधित होता वह मनुष्य चेष्टा करके पुरुषार्थ के द्वारा 20 वर्ष में साधित कर ले सकता है। यह आज का गणित है, इसी को हम साधना कहते हैं। तो वह जो पूछ रहा था विकासवादी, वेदांती कहता है कि तुमने अपनी किताबों को नहीं पढ़ा, तुमने अपने ही वैज्ञानिकों को नहीं पढ़ा। आज का जीव शास्त्री तो यह मान रहा है, वह तो ऐसा मानता है कि जो 200 साल में जो विकास होता उस 200 साल के विकास को 20 वर्ष में मनुष्य जी ले सकता है यदि वह अपने मन की शक्तियों का ठीक ठीक नियमन करे और उनको नियंत्रित करके नियोजित करे। कहते हैं ये इवोल्यूशन आफ्टर डार्विन एक किताब है, अपने यहां है लाइब्रेरी में, 3 जिल्दों में है, संपादक है सोल टैक्स नाम के। तो जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह ग्रंथ लिखा था डार्विन ने, तो इस ग्रंथ के जब 100 साल हो गए, तो विकासवाद के सिद्धांत के जब 100 साल हुए तो उसको, उसकी स्मृति में यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया, इवोल्यूशन आफ्टर डार्विन। डार्विन के बाद का विकासवाद, और उसमें बड़े बड़े जीव शास्त्रियों ने लेख दिए हैं। जूलियन हक्सले ने कई लेख दिए हैं, चार लेख दिए हैं तीन जिल्दों में। तो एक लेख का नाम है द इवोल्यूशनरी विजन, और उस इवोल्यूशनरी विजन में वे कहते हैं मैन इवोल्यूशन इज नॉट बायोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल। बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कह दी कि यह बट साइकोसोशल, यह मनुष्य का जो विकास है केवल बायोलॉजिकल नहीं है, केवल ऑर्गेनिक नहीं है, केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि वह क्या है, साइकोसोशल है। जैसे मनुष्य पर योनियों तक तो वह बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल है, परंतु जिस समय वह मनुष्य में आता है तो साइकोसोशल हो जाता है, मनोसामाजिक हो जाता है। क्या मतलब मनोसामाजिक का? हम जानते हैं एक, जैसे हम जानते हैं हमारी तीन प्रकार की एक उन्नति होती है। एक तो हमारा शारीरिक विकास होता है, हम देखते हैं कि हमारा शारीरिक विकास हो रहा है। हम जब पैदा हुए थे तो कितने छोटे पैदा हुए थे, शायद हमारा जो वजन रहा होगा 7-8 पाउंड का रहा होगा, आज 200 पाउंड का है। यह विकास है, यह विकास तो हमको दिखाई देता है, यह बिल्कुल दिखाई देता है। एक मानसिक विकास है, इंटेलेक्चुअल है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, इसको भी हम समझ पाते हैं। जैसे गांव में मैट्रिक पास किया लड़का कॉलेज में आता है शहर में, तो पहले जरा सहमता रहता है, क्योंकि गांव के वातावरण में बड़ा हुआ है, पला है, यहां आएगा सहमा रहेगा, बातचीत करने में हकलाएगा, वह उसकी स्थिति होती है। पर थोड़े ही दिन यहां पर कुछ महीने रहा कि धीरे धीरे वह नेता बन जाता है, फिर तो कितना चिल्लाता है। तो यह इसका एक बौद्धिक विकास हो रहा है, यह भी दिखाई देता है कि मानसिक विकास कैसा था, गांव में था, कितना कुंठित कुंठित था, शहर में आ गया, उसे अपॉर्चुनिटीज मिल गई, अवसर मिल गए, और वह धीरे धीरे अपने भीतर की खूबियों को प्रकट करने लगता है। यह उसका बौद्धिक विकास। और मनोसामाजिक साइकोसोशल विकास क्या है? साइकोसोशल विकास उसे कहते हैं जब एक इकाई, एक व्यक्ति इंडिविजुअल से पर्सन बनता है, यह इसकी भाषा है, जिसे हम कहेंगे साइकोलॉजी की। इंडिविजुअल से पर्सन बनता है, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल, इसको कहेंगे जैसे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पृथक है, उसको कहेंगे इंडिविजुअल। और उसे कहेंगे पर्सन कब कहेंगे? जब यह व्यक्ति दूसरों के साथ किसी प्रकार का एक तादात्म्य अनुभव करता है, कोई संबंध अनुभव करता है, तो उसको कहते हैं पर्सन। ये दो अंतर हो जाते हैं, एक इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी, ये दो शब्द हैं। तो इंडिविजुअलिटी का मतलब एकक, जहां पर व्यक्ति अपने को छोड़ करके और किसी का ख्याल नहीं करता। होते हैं परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं कि मुझे अच्छा खाना मिले, मुझे सबसे बढ़िया कपड़ा मिले, केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। जो परम स्वार्थी है उसको हम कहेंगे इंडिविजुअलिस्टिक, बड़ा ही स्वार्थी है, केवल अपनी बात देखता है। और पर्सन किसे कहेंगे? पर्सन वह है जो दूसरों के सुख दुख का अपने जीवन में अनुभव करता है, और दूसरों के साथ अनुभव करते हुए उनके सुख दुखों का घुलता मिलता है, उनके लिए भी कुछ करने की इच्छा रखता है, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। तो पर्सनैलिटी चिपकती है और इंडिविजुअलिटी हटाती है। तो इंडिविजुअलिटी जो है वह तोड़ देती है, क्योंकि व्यक्ति को वह स्वार्थ केंद्रित बनाती है, इसलिए जहां पर भी बहुत स्वार्थ है तो स्वार्थ तो व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ देता है, और पर्सनैलिटी चिपकाती है। इसलिए हम कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बड़ी सुंदर है। इसका मतलब कि आकार में ही सुंदर नहीं है, बल्कि उससे बात करने से इच्छा होती है कि उसके पास हम बारंबार जाएं, ऐसा लगता है उसके हम संस्पर्श संपर्क बना करके रखें। वह व्यक्ति हमारे लिए भी सोचता है, तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वहां पर तो पर्सनैलिटी का विकास होता है, और जहां पर व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है वहां पर वह इंडिविजुअल मात्र हो जाता है। तो साइकोसोशल का मतलब यह है कि उसके भीतर में दूसरों को साथ लेकर के चलने की क्षमता उत्पन्न होती है, दूसरों के सुख दुख के साथ सुखी और दुखी अपने को अनुभव करने की क्षमता का वह अनुभव करता है, यह है। तो इसीलिए वो कहते हैं मैन्स इवोल्यूशन इज नॉट बायोलॉजिकल बट साइकोसोशल, इट ऑपरेट्स बाय द मैकेनिज्म ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन which involves the cumulative self-reproduction and self-variation of mental activities and their products. तो इसीलिए उसके बाद एक बात वे कहते हैं, accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by breakthroughs to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas and beliefs, ideological instead of फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जब तक मनुष्य योनि में वह जीवन का प्रवाह नहीं आया है तब तक वह शारीरिक ही रहेगा, भौतिक ही रहेगा। और फिर उसके बाद वे कहते हैं कि फिर धीरे धीरे वह जब उसका सचमुच विकास शुरू होता है, मनुष्य योनि में आता है, वह मनोसामाजिक हो जाता है। और इसके बाद वे कहते हैं इट इज ओनली थ्रू पजेसिंग ए माइंड दैट ही हैज बिकम द डोमिनेंट पोर्शन ऑफ दिस प्लेनेट एंड द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्यूचर एवोल्यूशन। यह मनुष्य कितना, जूलियन हक्सले कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है मनुष्य मन से युक्त है और इसीलिए वह इस ग्रह का प्रभावी अंग हो गया है तथा उसके भावी विकास क्रम के लिए एक उत्तरदायी यंत्र बन गया है। यह जो मनुष्य है और क्या है, एंड इट विल बी ओनली बाय द राइट यूज ऑफ दैट माइंड दैट ही विल बी एबल टू एक्सरसाइज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटली। वह अपने उस मन के सम्यक उपयोग के द्वारा ही अपने उस उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाने में समर्थ होगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, ही कुड ऑल टू रेडली बी ए फेल्योर इन द जॉब, ही विल सक्सीड ओनली इफ ही फेसेज इट कॉन्शियसली एंड इफ यूजेज ऑल हिज मेंटल रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड रीजन ऑफ इमेजिनेशन सेंसिटिविटी एंड मॉरल एफर्ट। वह इस कार्य में एकदम असफल भी सिद्ध हो सकता है और वह सफल तभी होगा जब वह सजग होकर के उसका सामना करेगा और अपने ज्ञान और विवेक, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता तथा नैतिक प्रयास रूप समस्त मानसिक स्रोतों का उपयोग करेगा। यह इनका कहना है। और फिर इसीलिए फिर इसके बाद वे कहते हैं कि यह जो लक्ष्य है विकास क्रम का, वह लक्ष्य क्या है, इन द लाइट ऑफ अवर प्रेजेंट नॉलेज मैन्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एम is seen not as mere survival, not as numerical increase, not as increased complexity of organization or increased control over his environment, but as greater fulfillment, the fuller realization of more possibilities by the human species collectively and more of its component members individually. इसका मतलब कि आज के ज्ञान के आलोक में मनुष्य का सबसे व्यापक लक्ष्य न तो केवल जे रहने में है, न संख्या की वृद्धि में है, न समुदाय की बढ़ी हुई जटिलता में है और न अपने वातावरण पर अधिक नियमन प्राप्त करने की क्षमता में दृष्टिगत है, बल्कि वह तो अधिकाधिक पूर्णता के रूप में परिलक्षित होता है जिससे कि मानव जाति समष्टिगत रूप से और उससे भी अधिक उसके विभिन्न घटक व्यक्तिगत रूप से अपनी अधिकतर संभावनाओं का अच्छी तरह अनुभव कर लें। या और जब यह अनुभव कर लें अधिकतर संभावनाओं का, जैसा कहते हैं ये, तो यह जो अधिकतर संभावनाओं का अनुभव करेंगे कैसे करेंगे, बाय द राइट यूज ऑफ हिज माइंड, मन के ठीक ठीक उपयोग के साथ। तो यह जब कहा कि देखो तुम्हारे यहां ही कहा गया कि मनुष्य यहां पर अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और अपने मन को नियंत्रित करके नियोजित करके वह तो पेस ऑफ इवोल्यूशन को बढ़ा सकता है, विकास की गति को बढ़ा दे सकता है, तो जो विकास 200 साल में यूं ही साधित होता उसको अब 20 वर्ष में कर ले सकता है। और तुम कहते हो वह क्यों करे, अपने आप ही तो सब हो जाएगा। कहा नहीं, यह मनुष्य में रूढ़ है, यह रूढ़ है, वह चाहता है जल्दी शीघ्रता उसे संपादित करना चाहता है, शीघ्रता के साथ, इसके लिए वह कहीं पर चुप नहीं रहता है। वह चाहता है कि मैं हाथ पर क्यों तोड़ूं, जब मुझे मालूम पड़ गया है कि सामने बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को मैं बजाता हुआ चलूं और अपने लक्ष्य को पालूं। यह अपनी भाषा में, वेदांत की भाषा में, इसे हम साधना कहते हैं, मन पर नियंत्रण प्राप्त करना और उसे नियोजित करना और साधना के द्वारा उसे ले जाना। अब विकासवादी ने कहा तो तुमने बहुत ठीक की, एक प्रश्न अंत में करता हूं, क्या करो, अच्छा यह जो तुमने कहा कि यह जो अमीबा है, अमीबा के भीतर में यह सारी की सारी पूर्णता निहित है, सारी चेतना निहित है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब वह पूर्णता पूरी तरह से विकसित हो जाती है और उसको तुमने कहा कि यह जीवन का लक्ष्य उसने पा लिया। अब तुम भले ही कहते रहो ईश्वर का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, ज्ञान की उपलब्धि, ठीक है, और कहो कि उसने अपने वृत्त पथ को पूरा कर लिया है, जैसा भी तुम कहना चाहो, पर यह बता सकते हो कि यह जो है जो पूर्णता, ये जो अलग अलग आदमी दिखाई देते हैं, ये जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, कोई कहीं पर यहां पर चढ़ा है तो कोई यहां पर चढ़ा हुआ है, कोई यहां पर है, तो हम देखते हैं कि मनुष्यों के मन के स्तर में इतना परिवर्तन होता रहता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण बता सकते हो क्या? दो ही कारण है। दो कारण तो ऐसे हैं कि एक तो यह जो है, जैसे कहेंगे कि ये जो अमीबा है, जीवाणु कोष है, ये मानो छोड़े जा रहे हैं, अलग अलग पल में छोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल मानो ऐसे छोड़े गए। अब इसके बाद ये जीवाणु जैसे छोड़े गए, ये बढ़ते हैं, यहां पर प्रकृति ही इनको बढ़ाती है, और प्रकृति के प्रवाह में धीरे 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 बहते हैं बहते हैं बहते हैं, और ये मनुष्य योनि तक आते हैं। अच्छा, मनुष्य योनि तक जो आ गए, तो मनुष्य योनि तक आने में तो ये तो क्रम चलता ही रहता है, जैसे नदी का जल है। अभी मैं जिस नदी के जल को देख रहा हूं, दूसरे क्षण बस परिवर्तित हो जाता है, ये तो सतत चला हुआ है। तो सृष्टि की जो प्रक्रिया है वह सतत चली है, जैसे विनाश दूसरे एक छोर में चला है, इसी प्रकार सृष्टि एक छोर में चली हुई है। तो वह नदी के स्रोत के समान है, मैंने जिस जल को अभी इस क्षण देखा है, दूसरे क्षण वह परिवर्तित हो गया, वह चला गया। तो ठीक इसी प्रकार मानो अमीबा यह एक जीवन का स्रोत है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन के स्रोत हैं, बह रहे हैं, अलग अलग बह रहे हैं, तो इसके लिए भी यह जो अंतर है यह कारण हो सकता है। एक कारण अंतर का कि एक मनुष्य दूसरे से भिन्न है, इसका मतलब यह है कि वह जो मनुष्य है जो जरा आगे गया दिखाई देता है, उसका अमीबा पहले छूटा होगा यह कह सकते हैं, और इसलिए वह आगे बढ़ा दिखाई देता है। एक कारण यह। दूसरा कारण उसमें यह हो सकता है कि मनुष्य योनि में जो ही वह प्रवाह आता है, तो एक मनुष्य अधिक पुरुषार्थ व्यक्त करता है, दूसरा नहीं करता। दूसरा यही सोचता ठीक है जैसा होगा होगा, वह अपने को आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करता। किसी में यह साधना की मात्रा अधिक देखी जाती है, किसी में वह साधना की मात्रा नहीं देखी जाती। झट से पकड़ लिया विकासवादी ने, इसका क्या अंतर है? किसी में साधना की मात्रा अधिक देखी जाती, किसी में नहीं देखी जाती। तो मेरे प्रश्न तो बाद में मैं पूछूंगा, यह नया प्रश्न आ गया तुम्हारे प्रश्न कहने से, क्यों ऐसा होता है कि अंतर क्यों पड़ता है? ताकि यही अंतर जब बताएंगे तो उसे कहते हैं कर्मवाद। ये जो अंतर है, अभी तक हमने पुनर्जन्मवाद को देखा, यह जो अंतर पड़ता है कि एक व्यक्ति आगे बढ़ा दिखाई देता है, एक में आगे बढ़ने की स्पृहा रहती है, दूसरे में आगे बढ़ने की स्पृहा नहीं रहती, यह जो अंतर है, यह अंतर कौन करता है? उसे कहा वह कर्म का सिद्धांत करता है। तो वह कर्म का सिद्धांत क्या है, हम कहा वो बताएंगे, वह कर्म का सिद्धांत बताएंगे, तो उसके कारण वह अंतर पड़ता है, तो वह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा का ठीक है, तो आपने दो कारण बताए, एक तो यह कि उसका जो अमीबा है वह पहले छूटा होगा, और दूसरा कारण आपने बता दिया कि एक व्यक्ति में साधना की तत्परता दिखाई देती है। तो आप कहते हैं यह जो तत्परता दिखाई देती है और तत्परता नहीं दिखाई देती, कमोबेश जो मात्रा है तत्परता की, उसका कारण कर्मवाद है, और यह कर्मवाद आप बाद में समझाएंगे? हमने कहा हां समझाएंगे। अच्छा अब यह बताइए कि यह जो अमीबा है, अब अमीबा के भीतर में यह जो पूर्णता छिपी है आप कहते हैं, तो यह पूर्णता कब छिपी, क्यों छिपी और कैसे छिपी, यह बताइए आप कि अमीबा के भीतर में वह पूर्णता कब छिपी, क्यों छिपी और कैसे छिपी। तो कहा भाई अच्छा इसका उत्तर बताता हूं, सुनो, बहुत ध्यान से सुनता रहा, फिर थोड़ी देर होगी बोला क्या जी तुम तो बड़ी जिद्दबाज़ बोलते ही नहीं हो। क्यों तो मैं तो बोल तो रहा था, कहां बोल रहे थे? अच्छा सुनो, तुम बेवकूफ बना रहे हो, बोलते नहीं हो और सुनो सुनो कहते हो। तीन बार जब उसने किया तो फिर वेदांति ने कहा एक था एक व्यक्ति, तो क्या हो गया? बोले वो व्यक्ति था ना भगवान का बड़ा भक्त था, उसके पास एक दिन आया कोई व्यक्ति मारा हुआ बेचारा दुनिया में आफत का, आकर कहा अरे भगवान भी क्या है, बिल्कुल ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं है, ये दुनिया में अन्याय होता है, वे भी बहरे हैं, भगवान को सुनते नहीं, किसी की सुनते नहीं। अरे उस साधु व्यक्ति ने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो, भगवान तो ऐसे हैं जो चींटी के चलने तक की आवाज सुन लेते हैं। अच्छा उस व्यक्ति ने कहा चींटी के चलने की आवाज होती है? साधु ने कहा हां होती है, सुन लेते हैं। अच्छा कैसी आवाज होती है? अच्छा सुनो। अरे बोलते क्यों नहीं, कैसी आवाज होती? अच्छा सुनो। अरे कैसी आवाज होती का सुनो, अब चिट्ठी की आवाज तो हो रही है, मैं तो सुन रहा हूं, भगवान सुन लेते हैं। तो वो तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती। कहा हाँ यही है। ये जो मैं उत्तर दे रहा था, तुम प्रत्येक बार मुझसे पूछते थे उत्तर क्या है, मैंने उत्तर दिया। तुमने पूछा उत्तर क्या है, मैंने उत्तर दिया। इसका उत्तर मौन है, मैं नहीं जानता क्या हो गया। तो उस अमीबा के भीतर में यह सारी शक्ति सारी पूर्णता कब छिपी, क्यों छिपी और कैसे छिपी, इसका उत्तर नहीं है मेरे पास। मैं नहीं जानता कब क्यों कैसे। पर हां, इसके बाद की बात जो अनुमान और विचार और तर्क के द्वारा प्राप्त होती है उसको हम बता सकते हैं, पर यह कैसे छिपी क्यों छिपी इसका कोई उत्तर नहीं। यह तो इसे कहते हैं यह पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है तो केवल यही व्याख्या करेगा। अब पुनर्जन्म कैसे होता है, ठीक तो है, पुनर्जन्म कैसे होता है और पुनर्जन्म जो होता है तो उसके पीछे ये कर्म कैसे कारण है, कर्म और पुनर्जन्म दोनों कैसे जुड़े हैं, इसको हम अगली बार लेंगे। तो इसमें उसने एक और प्रश्न किया विकासवादी ने, कहा कि ये जो आपके साथ चर्चा चल रही थी, आप मौन इत्यादि की बात कह रहे थे ना, तो मेरे बात ख्याल आ गया। बोले क्या ख्याल आ गया? बोले अच्छा, आपने कहा कि देखिए कि मनुष्येतर योनियां, यहां तक तो मैकेनिकल है, यांत्रिक है, साइकोलॉजी, ये फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, यहां तक आपने कहा बायोलॉजिकल है, यह केवल ऑर्गेनिक है यह जो प्रक्रिया है, और उसके बाद जो ही मनुष्य योनि में आती है तो साइकोसोशल आपने ऐसा ऐसा कहा, और फिर कहा मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य। पर हमने तो आपके यहां दर्शन में ऐसा भी पढ़ा है, आप लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि मनुष्य से मनुष्य नहीं, मनुष्य से नीचे भी योनि में जा सकता है मरने के बाद। तो क्या मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है, या मनुष्य मरने के बाद दूसरी योनि में भी जा सकता है? वेदांती ने कहा कि यह जो तुम पूछ रहे हो तो इसका उत्तर है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरी योनि में भी जा सकता है। यह कैसे जा सकता है? कहा वह कर्म का सिद्धांत जो आएगा उस समय समझाएंगे कि यह जो मनुष्य है अपने कर्मों के भोग के लिए वह जन्म ग्रहण करता है, देखो कर्मों के भोग के लिए, और फिर अपने कर्मों को बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ इच्छा स्वातंत्र भी है, पुरुषार्थ भी है, फिर वह बंधा भी हुआ है अपने संस्कारों के द्वारा। यह एक जटिल प्रश्न है, उसकी मीमांसा अगली चर्चाओं में करेंगे, परंतु यह कहा कि इतना तुम जान लो कि मनुष्य ठीक है वह ऊपर भी जाता है और वह पीछे भी चला जाता है। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं उद्धम गच्छन्ति सत्कस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यहां पर वह कहा गया कि जो अत्यंत सत्व वाले होते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, वे तो अपने कर्मों का भोग करने के लिए देवलोक में चले जाते हैं मृत्यु के बाद। जो मध्य वृत्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं कि राजसिक होते हैं, उनमें राजसी भाव होता है, सत्वगुण भी होता है, पर रजोगुण प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति फिर मनुष्य बनते हैं। और फिर इसके बाद यह भी कहा कि जो अत्यंत तमोगुणी संपन्न होते हैं, आसुरी भावापन्न होते हैं, तो वे जघन्य वृत्ति संपन्ना, तो वे जघन्य वृत्ति वाले लोग वे नरक त्रियक योनियों में भी जाते हैं नीचे की योनि। और जब कहता है विकासवादी की आपके ग्रंथों में कोई प्रमाण है, कहते हैं यह भागवत ही प्रमाण है, भागवत में सब लिखा है, भागवत में कई जगह यह लिखा है, महाभारत में तो बिल्कुल यह कहा है कौन कैसा जाता है कैसा होता है, तो वह सत्य है या नहीं इसमें हम नहीं जा रहे हैं, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से यह माना गया है कि यह मनुष्य योनि ही कर्म योनि,